മോക്ഷമാർഗസ്യ നീതാരം ഭേത്താരം കർമ്മഭൂഭൃതാം ജ്ഞാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധയേ. ശുഭയോഗ് പുണ്യ കാ ആശ്രവ, അശുഭ യോഗ് പാപ കാ ആശ്രവ. യോഗ കാ കാരണ പരിണാം ഹ, പരിണാം കാ കാര്യ യോഗ ഹ. और योग का कार्य बंध है. योग स्वयं आश्रव है, तो आश्रव बंध का कारण है. आश्रवो बंध हेतु स्यात्. स कषाया कषाय यो सांपराई केरिया पथ यो. सकषाय और अकषाय, सकषाय जीव में सांप्रायिक कर्म का आश्रय होता है और अकषाय जीव में ईर्यापथ कर्म का आश्रय होता है. सांप्रायिक ईर्यापथ यो हो, ये षष्ठी, और सकषाय अकषाय यो हो सप्तमी. स्वामी भेदाद आश्रव भेद, स्वामियों के भेद से आश्रव में भेद पड़ जाता है. सकषायो कषायश्चेति, स्वामी कौन है? जो कषाय सहित जीव है वो, और दूसरे जो अकषाय कषाय रहित हैं वे. तो कषाय क्रोधादि, कषाय क्रोधादिक है. कषाय इव कषाय, वो कषाय के समान होते हैं इसलिए उसको उनको कषाय कहते हैं. का उपमार्थ, बोले कि ये इसका अर्थ क्या है, इस उपमा का मतलब क्या हुआ, कषाय का मतलब क्या होता है. तो कहते हैं यथा कषायो, जैसे कषाय माने एक ऐसे ऐंठने वाली वस्तु को कषाय बोलते हैं. जैसे हरड़ है या फिर आंवला है, इसमें ऐठन होती है. जैसे मुंह में डालो तो मुंह ऐसे थोड़ा सा खींचता है. फिर यहां उदाहरण दे रहे नयक ग्रोधादि, ये बड़ का जो पेड़ होता है बैनियन ट्री, उसमें भी ये प्रकृति होती है. श्लेष हेतुस, तो वो चिपकाने में कारण बन जाता है. तथा उसी प्रकार क्रोधादिरप्यात्मन कर्म श्लेष हेतुत्वात् कषाय इव कषाय इत्युच्यते. उसी प्रकार क्रोधादि भी आत्मा के साथ कर्म के श्लेष का हेतु होने से कषाय के समान कषाय इस तरह कहा जाता है. कषाय भाव भी इसी तरह कहा जाता है. इसका और भी खुलासा इसमें किया है प्रवचन सार की टीका में. जैसे लोध्र और फिटकरी, पटिक बोलते हैं जिसको. पटिक किसको बोलते हैं? नहीं, वो जो पानी में डालते हैं ना तो मिट्टी नीचे हो जाती है. हाँ, तो वो इंग्लिश में एलम, एलम दैट इज सम क्रिस्टलाइन, नॉट लाइम, बट नो, नॉट लाइम, नॉट लाइम स्टोन, इट इज अ डिफरेंट थिंग. एलम इट इज कॉल्ड, एलम नॉट एग्जैक्टली वाइट, इट इज लाइक सेंधा नमक, इट इज लाइक जस्ट लाइक ए सॉल्ट, ग्रेट बिग क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट. तो पानी में वो डाल दो और अभी हम दूसरी बात बता रहे हैं. वो तो हमें मालूम है कि मिट्टी को नीचे साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए उसको डाला जाता है. पर उसमें उदाहरण दिया है कि किसी कपड़े में कोई रंग डाला जाए मंजिष्ठ वगैरह का, और उस कपड़े को उस पानी में डाल दिया जाए जिसमें फिटकरी और वो लोध्रादि जो भी है, वो एक प्रक्रिया, उसको उसका इस्तेमाल करने से वो जो ऐठन रहती है उसमें कषायलापन, उससे वो रंग पक्का हो जाता है। हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा जाए, ये भी एक कहावत है। हर में भी वो ऐठन होती है, तो जिस चीज में एक ऐसी खिंचाव वाली चीज रहती है जिसमें रंग वगैरह चिपक जाते हैं, तो ये जब क्रोध आदि के उदय में आते हैं तो फिर आत्मा का अमूर्त, आत्मा आकाश के समान बिल्कुल अमूर्त है, लेकिन आत्मा के प्रदेशों में वैसी ऐठन और वैसी चिपकन आ जाती है। तो उस आत्मा को सकषाय कहते हैं, ऐठन वाली आत्मा। अभी सब अपन ऐठन वाली हैं, कुछ कषाय सहित ही है, दशम गुण स्थान को पार करके अकषाय होते हैं। तो सहकषायेण वर्तत इति सकषाय, जो कषाय सहित वर्तते हैं वो सकषाय हैं। न विद्यते कषायो यस्येत्य कषाय, जिसके पास कषाय विद्यमान नहीं है वो अकषाय है। सकषायश्च अकषायश्च, सकषाया कषायौ, द्वंद्व समास कर दिया, इतर इतर द्वंद्व। फिर तयोः सकषाया कषाययोः, उन दोनों में सकषाय और अकषाय में संपराय संसार, संपराय का अर्थ संसार होता है। तत्प्रयोजनम कर्म, वो जिस कर्म का उद्देश्य है अर्थात जिस कर्म के फल स्वरूप संसार मिलने वाला है वो सांप्रायिकम, सांप्रायिक कर्म है। तो ईरणम ईर्या, योगो गति इत्यर्थ। ईरण का अर्थ होता है ईर्या, आना या जाना, गति। तद द्वारकम कर्म ईर्यापथम, वो जिसका द्वार है ऐसा कर्म ईर्यापथ है, यानी सिर्फ आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। कषाय रहित हो जाती है आत्मा, तो ग्यारहवें गुण स्थान के ऊपर कर्म आता है और चला जाता है, रुक नहीं सकता। सांप्रायिकम च ईर्यापथम च, सांप्रायिक ईर्यापथ है, सांप्रायिक और ईर्यापथ का समास किया तो वही इतर इतर द्वंद्व में द्विवचन हो गया, सांप्रायिक ईर्यापथ है, क्योंकि ये दोनों कर्म के विशेषण है, सांप्रायिक कर्म और ईर्यापथ कर्म। तयोः सांप्रायिक ईर्यापथयोः, उन दो का, यहां तयोः जो है चतुर, ये षष्ठी है, सांप्रायिक और ईर्यापथ का आश्रय होता है। यथा संख्यम अभिसंबंध, संख्या क्रम से लगा लेना, सकषायस्य आत्मन मिथ्या दृष्टि सांप्रायिकस्य कर्मणा आश्रवो भवति, जो सकषाय आत्मा है मिथ्या दृष्टि है उसको सांप्रायिक कर्म का आश्रय होता है। अकषायस्य, और जो अकषाय उपशांत कषाय आदि है जो ग्यारहवें आदि गुणस्थान वर्ती हैं उनके ईर्यापथस्य कर्मणा आश्रवो भवति, ईर्यापथ कर्म का आश्रय होता है। ईर्यापथ, ईरणम आना जाना, ईरण का मतलब फ्लो, एक मूवमेंट, एक गति, और ये सांप्रायिक में क्या है, रुक जाता है कर्म, आत्मा में बंद करके ठहर जाता है, और ईर्यापथ में ठहरता नहीं है, वो आता है और फिर एकदम एक समय का बंद होता है, समय अट्ठे दिगो बंद हो और उदय में आकर झड़ जाता है, नश चला जाता है। सातावेदनी का ही होता है वो ईर्यापथास्त्र, और किसी कर्म का नहीं होता। आदावुद्दिष्टस्याश्रवस्य भेद प्रतिपादनार्थमाह, तो सांप्रायिक कर्म जो होता है उस सांप्रायिक कर्म का जो आश्रव है सकषाय जीव को होने वाला, उसके भेद बतलाते हैं। इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः, पूर्वस्य सांप्रायिकस्य भेदाः, पूर्व वाला जो सांप्रायिक आश्रय है उसके भेद ये हैं पांच इंद्रियां, चार कषायें, फिर पांच अव्रत यानी पांच पाप, और क्रिया यानी 25 क्रियाएं होती हैं। तो कुल कितने होंगे? पांच चार और पांच 14, 14 और 25। तो ये याद रखना है कि ये 39 आश्रवों के भंग कषाय के कारण होते हैं। अत्र इंद्रियादीनां पंचभिर् यथा संख्यम अभिसंबंधो वेदितव्य है। संख्या के साथ ये जो पहले नाम दिए हैं उनको क्रम से जोड़ लेना। इंद्रियाणि पंच, चत्वारः कषाया, पंचाव्रतानि, पंचविंशति क्रिया इति, ऐसे जोड़ना। तत्र पंचेन्द्रियाणि स्पर्शनादीन्युक्तानि, पंच पांच इंद्रियां स्पर्शन आदि कही जा चुकी है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि सूत्र में कही जा चुकी है। चत्वार कषायाः, चार कषायें जो है वो भी प्रसिद्ध है, क्रोधादय, क्रोध मान माया लोभ। पंचाव्रतानि, पांच अव्रत, प्राण व्यपरोपणादीनि भक्ष्यन्ते, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये आगे कहे जाएंगे सातवें अध्याय में, रत्नकरण में कहे जा चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र में सप्तम अध्याय में कहे जाएंगे। पंचविंशति क्रिया उच्यन्ते, 25 क्रियाएं कही जा रही हैं, ध्यान से सुनना। चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया सम्यक्त्व क्रिया, 25 क्रियाओं में प्रथम क्रिया जो है वो सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया है, उसका नाम सम्यक्त्व क्रिया है। और वो कैसी है क्रिया? तो चैत्य यानी जिन प्रतिमा, गुरु यानी आचार्य उपाध्याय साधु, और प्रवचन का अर्थ होता है आगम, इनकी पूजा आदि है लक्षण जिसका, अर्थात ये जो पहली क्रिया होती है सम्यक्त क्रिया, उसमें देवशास्त्र गुरु की पूजा आदि की जाती है। अब आदि शब्द में अभिषेक भी आ जाएगा और अन्य भी जितने धर्मानुष्ठान रहेंगे इनसे संबंधित, देवशास्त्र गुरु से संबंध रखने वाले, वो सब इसमें सम्मिलित होंगे। तो ये सम्यक तो क्रिया है, सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया है। जैसे अभी एक धारणा ऐसी चलती है कि ये पूजा आदि जो क्रियाएं होती है इनसे पुण्य का आश्रय होता है, इनसे पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा थोड़ी होती है, इनसे तो नवीन कर्मों का बंद होता है। पर यहां पर आचार्य महाराज के जो वचन है वो ये कह रहे हैं कि इस क्रिया से सम्यक्त की वृद्धि होती है। अब सम्यक्त की वृद्धि का अर्थ क्या है? क्या सम्यक्त घटता बढ़ता है? क्या सम्यक्त में हानि वृद्धि संभव है? तो उसका उत्तर है कि है। सम्यक्त की जो शक्ति है वो कम ज्यादा होती है। एक बार क्षायिक लब्धि को लेकर के इस पर चर्चा हुई थी कि जघन्य क्षायिक लब्धि अविरत सम्यक दृष्टि को होती है और उत्कृष्ट क्षायिक लब्धि घाती कर्म का क्षय करने वाले केवली भगवान को होती है। यानी क्षायिक सम्यक दर्शन के भी जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। जैसे जैसे उसके अविभाग प्रतिच्छेद वृद्धि को प्राप्त होंगे, जैसे जैसे शक्ति के अंश बढ़ेंगे, वैसे वैसे सम्यक दर्शन सशक्त होता चला जाएगा। ये अविभाग प्रतिच्छेद शक्त्यंश को कहते हैं और शक्त्यंश जो है वो भाव होता है। शक्त्यंश द्रव्य नहीं होता, वो क्षेत्र भी नहीं होता, काल भी नहीं होता, वो भाव होता है। तो सम्यक तो भाव में वृद्धि होती है इससे। तो फिर इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि इससे विपरीत क्रिया होगी तो फिर हानि भी हो सकती है। तो जो ये बात चलती है ना कि पूजा से पुण्य का आश्रय होता है और कुछ नहीं होता, तो ये और कुछ नहीं होता इसमें थोड़ा सुधार आवश्यक है, क्योंकि यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक्त्व की वृद्धि भी होती है, सम्यक्त्व की शक्ति बढ़ती है। तो इसका अर्थ ये है कि ये ऐसे आलंबन है कि इन आलंबनों का निमित्त पाकर आत्मा अपने भावों में विशुद्धि बढ़ाकर विकसित होती है। अब एक बात और है कि अपने भावों की विशुद्धि जब बढ़ती है तो विशुद्धि का बढ़ना कोई ना कोई कार्य तो करेगा ही। विशुद्धि बढ़ रही है तो उस बढ़ती हुई विशुद्धि के माध्यम से कुछ घटना तो होगी, और वो घटना क्या है? आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भाव पाहुड़ ग्रंथ में एक गाथा दी है, जिणवर चरणम बुरुहम नमंति जे परम भक्ति रायण ते जम वेलि मूलम खणंति वर भाव सत्थीन। ये भाव पावड़ की 153 क्रमांक गाथा है। इसमें आचार्य महाराज ने जो प्राकृत गाथा लिखी उसका हिंदी ये है, जिणवर चरणम्बुरह, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल को जे परम भक्ति रायण नमंती, जो परम भक्ति से होने वाले अनुरागवश नमस्कार करते हैं, ते वे वर भाव सत्थीन उत्कृष्ट सम्यक्त रूपी औजार के द्वारा, हथियार के द्वारा, जम्म वेली मूलम खणंती, संसार रूपी जो बेल है उसको मूल से खोद डालते हैं, यानी संसार भ्रमण का अंत कर डालते हैं जो भगवान को नमस्कार करने वाले। और नमस्कार अंत में होता है, बोले एक प्रक्रिया है, अर्चना, पूजा, वंदना और नमस्कार। तो इससे ऐसा सूचित होता है कि ये मात्र पुण्य बंध का कारण नहीं है, और जो एक धारणा बनी हुई है कि शुभ भाव से पुण्य का आश्रय ही होता है, अशुभ भाव से पाप का आश्रय होता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस धारणा में जो एक नियम बना रखा है लोगों ने कि शुभ भाव से पुण्य का आश्रय ही होता है और कुछ नहीं होता, पुण्य का आश्रय ही होता है, ये जो ही है ये शास्त्र में नहीं है। जैसे उदाहरण हम देते हैं आपको, समय पावड़ ग्रंथ है, उसमें एक गाथा ही है, रत्तु बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो एसो जिणो वदेसो तम्मा कम्मेसु मारज्ज। रागी जीव कर्म का बंध करता है और विराग संपन्न जीव कर्मों से छूटता है। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, इसलिए तुम राग मत करो, कर्मों के प्रति राग मत करो। ये एक गाथा है। अब इस गाथा में रागी जीव कर्म का बंध करता है, ऐसा लिखा है। तो ये निश्चित हुआ कि जो रागी नहीं है वो कर्म का बंध नहीं करेगा। इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। लेकिन अड़चन यहां आ रही है कि जो ये कहा जाता है कि रागी जीव कर्म का बंध ही करता है और कुछ नहीं कर सकता, वो यहां पर बाधा आती है। क्योंकि अभी अपन ने आचार्य कुंदकंद स्वामी के वचन पढ़े, वो बोल रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के चरण कमल को भक्ति पूर्वक नमस्कार करने से संसार की लता जड़ से खुद जाती है। क्या मतलब है? ये बंध है क्या? संसार रूपी लता जड़ से उखड़ जाए, क्या ये बंध तत्व है? क्या ये आश्रव तत्व है? प्रश्न ही नहीं उठता। संसार का क्षय निर्जरा तत्व है, आश्रव बंध तो हो ही नहीं सकते। और देखिए, विशुद्धि के बारे में ऐसा एक नियम है कर्म सिद्धांत में कि अनंत गुणी विशुद्धि जब बढ़ती है तो असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा होती है। जैसे अभी आपकी जो विशुद्धि चल रही है वो जैसे अनंत गुणी वृद्धि को प्राप्त हो जाए तो फिर कर्मों की जो निर्जरा है वो असंख्यात गुणित हो जाएगी। तो ये स्थिति क्या शुद्धोपयोग में ही बनेगी या शुभोपयोग में भी बनेगी, इस पर सबको विचार करना है। अब इसको और समझ लें अपन, कुछ और भी आगम के उद्धरण देकर यहां पर उस बात को रखते हैं कि यदि अपन ये मान लें कि शुभ भाव से निर्जरा कैसे हो सकती है, शुभ भाव तो बंध का कारण है, वो तो राग है। एक बात ध्यान में रखना कि यहां पर अपनी तरफ से निर्णय नहीं करना है। शुभ भाव राग है तो बंध है, एक बंध का ही कारण है, ये ही आप अपनी तरफ से मत लगाओ। पहले एक बार ध्यान से सुन लो जो बात कही जा रही है, उसको सुन लो और फिर विचार करके उत्तर देना। कोई अकुलता नहीं है। और आप गलत उत्तर दोगे तो आपका नुकसान होना है, क्योंकि गलत उत्तर आग्रह से ही दिया जाएगा, आगम से नहीं दे सकता कोई गलत उत्तर। आगम से तो सही उत्तर मिलता है। तो एक बात सुनो, जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है यहाँ पर एक प्रश्न किया है, पुण्य कम बंधत्थीणम देश भयाणम मंगला मंगल करणम जुत्तम न मुनीणम कम अक्षय कंखुवाणम यदि न वो तुम जुत्तम। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है जयधवला के इस प्रारंभिक प्रकरण में। बोले पुण्य कर्म का बंध चाहने वाले जो देश विरत हैं, जिन्होंने मुनि अवस्था धारण नहीं की है, वे मंगलाचरण करें। उनके लिए तो योग्य है कि वो मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि मंगलाचरण से पुण्य का संचय होता है। मंगम पुण्यम लाति इति मंगलम, मंगल का अर्थ होता है जो पुण्य को लाता है, तो उनको पुण्य की आवश्यकता है तो वो कर ले, मंगलाचरण उचित है उनके लिए। न मुनिणम, लेकिन मुनियों के लिए मंगलाचरण करना योग्य नहीं है। कम्म क्षय कंखुवाणम यदि, क्योंकि वो कर्म क्षय की आकांक्षा करते हैं, और कर्म क्षय की आकांक्षा करने वाले अगर मंगलाचरण करेंगे तो मंगलाचरण तो शुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं है, और शुभ भाव से कर्म का बंध हो जाएगा। जो कर्म क्षय चाहने वाले कर्म का बंध क्यों करें? इसलिए मुनियों को मंगलाचरण करने की आवश्यकता नहीं है। इदि न वोत्तम जुत्तम, ऐसा कहना योग्य नहीं है। आचार्य कह रहे हैं जिसको कहना था उसने तो कह दिया, लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं कि ऐसा कहना योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो बोलते हैं कि पुण्य बंध हे उत्तम पड़ी विशेषा भावादो। जैसे श्रावकों को पुण्य बंध के जो कारण है, मुनियों के लिए भी कारण समान है। पुण्य बंध के कारण श्रावकों के समान है। विशेषा भावादो, भेद का अभाव है। तो मंगल सेव सराग संयम सवि परिचाग प्रसंगादो। बोले कि सराग संयम भी पुण्य का आश्रव कराता है। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि साधु को कर्म के बंध के जितने कारण है उनका त्याग कर देना चाहिए, मंगलाचरण का त्याग कर देना चाहिए, तो फिर तो सराग संयम का भी त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक सराग अवस्था है मुनि की, तब तक सराग संयम है, तो उसको भी छुड़वा दो। न च एवं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? तेन सराग संयम परिचाग प्रसंग भावेण निव्विगमना भावादो। निव्विगमन भावा गमना भाव प्रसंगादो, क्योंकि सराग संयम का अगर त्याग कर लेंगे तो वीतराग संयम होगा नहीं बिना सराग संयम के, तो निर्वाण गमन का ही अभाव हो जाएगा। सराग संजमो गुण सेठ ही निज्जराय कारणम। और एक बात और सुन लो कि जो सराग संयम है वो गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है। तेण उसके द्वारा बंधादो मोक्षो असंख्येज्य गुणोत्ति, बंध की अपेक्षा से मोक्ष असंख्यात गुणित होता है सराग संयम से। ती इसलिए सराग संजमे मुनीणम वट्टणम जुत्तम इदि न पच्चवट्ठावणम पच्चवट्ठाणम कायवम। और चूंकि सराग संयम से बंध की तुलना में मोक्ष असंख्यात गुणित होता है, तो प्रॉफिट कौन सा हुआ? मोक्ष का प्रॉफिट हो रहा है ना, बंध का लॉस तो कम हो रहा है। जिसको लॉस समझा जा रहा है वो तो कम हो रहा है। तो इसलिए सराग संयम में मुनि का आचरण करना उचित है, इसलिए उसका त्याग नहीं करना है। और इसके बाद कह रहे हैं कि अरहंत नमोकारो, मंगलाचरण में अरहंतों को नमस्कार करती है, नमः श्री वर्धमानाय सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम, सब मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग से नेता वंदे तद्गुण लब्धे, अरहंतों को नमस्कार कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि अरहंत नमोकारो, अरहंत को किया हुआ नमस्कार, संपहीय बंधा दो, जो नमस्कार के समय बंधने वाला पुण्य है उससे असंख्य जुगुण कम खय कारक होती, असंख्यात गुणित पापों की निर्जरा का कारक है। अरहंत को किया हुआ नमस्कार निर्जरा का कारक है। तो ये कौन सा भाव है निर्जरा का कारक, शुद्ध है या शुभ? ये नमस्कार भाव कौन सा है, शुद्ध भाव है या शुभ? शुभ भाव है, क्योंकि शुद्ध भाव तो ध्यानात्मक है, निर्विकल्प समाधि है। तो ये नमस्कार निर्विकल्प समाधि नहीं है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि असंख्यात गुणित कर्मों के क्षय का कारण है, इसलिए तत्व मुनिनम प्रवृत्ति प्रसंगादो, इसलिए उसमें भी मुनियों की प्रवृत्ति प्रासंगिक है। फिर एक उक्तम जो एक गाथा दी, अरहंतृणमुकारम भावेण जो करे दिपयडमदी सो सव दुख मुखम पावई अचिरेण कालेण। मूलाचार ग्रंथ की गाथा है कि जो अरहंत भगवान को श्रद्धा के साथ सावधान चित्त होकर नमस्कार करता है, वो अल्पकाल में सब दुखों से छूट जाता है, सब दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तेण इसलिए सोवण भोयण पयाण पच्चावण सक्त पारंभाद क्रियासु नियमेण अरहंतण मुक्कारो कायवोत्ति सिद्धम। क्या सुंदर वाक्य है। इसलिए सोते समय, भोजन के समय, कहीं बाहर जाते समय, वहां से लौटते समय, शास्त्र को प्रारंभ आदि करते समय, इन सब क्रियाओं में नियम से अरहंत भगवान को नमस्कार करना है, ये सिद्ध हुआ। एक वाक्य और भी महत्व का है, दूसरे अनुच्छेद में आचार्य लिख रहे हैं, यदि कोई कहे कि परमागम में अपना उपयोग लगाने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बोले नचेदम असिद्धम। अच्छा, नहीं होती है, एक मिनट इसमें शब्द फिर से देख, कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जिनमें मंगलाचरण नहीं है, तो मंगलाचरण करने से विघ्नों का नाश होता है, ये एक प्रसिद्धि है। और ये एक सच्चाई भी है, दोनों बातें हैं ध्यान में रखने की। तो जिन आचार्यों को विघ्न की आशंका नहीं थी, उन्होंने बिना मंगलाचरण के भी शास्त्र लिखे हैं, जैसे कसायपावड़ ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं है, जैसे चूर्णी सूत्र जो कसायपावड़ के सूत्र पर लिखे गए और सूत्र हैं उसमें भी मंगलाचरण नहीं है, जय धवला में मंगलाचरण है। तो उनका ये है कहना कि इनको ऐसा कोई लगा नहीं कि कोई विघ्न का निवारण करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने बिना मंगलाचरण के ग्रंथ प्रारंभ कर दिया। तम और फिर बोले कि फिर उनके कर्म कैसे नष्ट होंगे, कर्म तो सबके साथ लगे हैं। तो बोले कि तमच परमागम उपजोगादो चेवणस्यति, आगम में ध्यान लगाया उसी से कर्म नष्ट हो गया। न चेदम असिद्धम, और ये बात असिद्ध भी नहीं है, आगम में ध्यान लगाने से भी कर्म नष्ट होते हैं, ये बात सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? तो बोले सुह शुद्ध परिणामे ही कम्मखया भावे तक्खयाणुवत्ति दो, शुभ और शुद्ध इन दोनों प्रकार के परिणामों द्वारा कर्मों का क्षय न हो तो उसका क्षय न हो। अर्थात कर्मों का क्षय शुभ और शुद्ध दोनों परिणामों से होता है, और शुभ परिणाम को सराग होते हुए भी सर्वथा सराग कहना विचारणीय हो जाएगा, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में ही आगे चलकर एक सूत्र लिखा है, परे मोक्ष हेतु, अंत के दो ध्यान मोक्ष के कारण है, उसमें से धर्म ध्यान सराग है और शुक्ल ध्यान वीतराग है। धर्म ध्यान विवक्षा से वीतराग है, बुद्धिपूर्वक राग के अभाव में शुद्धोपयोग की अवस्था में किसी दृष्टि से वीतराग है, वास्तव में वीतराग नहीं है, क्योंकि वास्तव में वीतराग होता तो निराश्र होता। प्रवचन सार की 245वीं गाथा में लिखा है कि श्रमण के दो भेद हैं, दिगंबर मुनि दो प्रकार के होते हैं, सराग और वीतराग। अब कोई पूछे कि दिगंबर मुनि सराग होते हैं कि वीतराग, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मुनि के बारे में भ्रामक जानकारियां प्राप्त हुई है, कर्म की उदय की बात है, उनको जो आगम का सत्य है वो नहीं मिल पाया, तो फिर उनके धारणा में ये बैठ गया है कि दिगंबर मुनि तो वीतराग होते हैं। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी 245वीं गाथा में कह रहे हैं प्रवचन सार में, समणा शुद्ध वजुत्ता सुहो वजुत्ता व होन्ति समयम में ते सुव शुद्ध वजुत्ता निरासवा सासवा सीसा। श्रमण आगम में दो प्रकार के बताए गए हैं, एक शुभो शुद्धोपयोगी और दूसरे शुभोपयोगी। तो उसमें शुद्धोपयोगी निराश्रव है, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी आश्रव सहित है, और आश्रव बिना राग के नहीं होता, तो इससे सिद्ध है कि शुभोपयोगी सराग है और दोनों श्रमण है, ये भी कह रहे हैं। और सराग संयम के बारे में जय धवला में ये स्पष्ट लिखा कि जितना उससे बंद होता है उससे असंख्यात गुणित मोक्ष होता है सराग संयम से। तो फिर वो रागावस्था जो बनी है, सराग अवस्था जो है, वो केवल बंध का कारण नहीं है, अब कोई कहेगा कि फिर राग तो बंध का कारण है, राग बंध का कारण अवश्य है, कोई आपत्ति नहीं है, पर यहां पर एक बात ध्यान से समझना कि राग बंध का ही कारण है क्या, इस पर विचार करना है, अभी उत्तर नहीं देना। और अगर आपने जल्दबाजी में यह उत्तर दिया कि हां राग बंध का ही कारण है, तो फिर हम कुछ बातें आपके सामने रखते हैं, उस पर विचार करना। बातें ये है कि अरहंत को नमस्कार करने पर असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा हो रही है, वो कैसे हो रही है? अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि अरहंत को नमस्कार करने से जितना पुण्य बन रहा हो रहा है, उससे असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा भी हो रही है। कैसे हो रही है? कौन सा भाव है वो? धर्मानुराग का भाव है कि नहीं है? तो उस धर्मानुराग से केवल बंद हो रहा है क्या? अब कोई कहेगा कि नहीं, ये तो ठीक है, धर्मानुराग है, उससे तो बंद हो रहा है पुण्य का, लेकिन आत्मा के अंदर और भी गुण है, ज्ञानादिक गुण है, चरित्र है, सम्यक दर्शन है, तो इनसे निर्जरा हो रही है। अब ध्यान से सुनना इस बात को कि यदि रत्नत्रय से निर्जरा हो रही, क्योंकि प्रसंग मुनि का था वहां पर, और मुनि को असंख्यात गुणी निर्जरा अरहंत को नमस्कार करने से होती है ऐसा लिखा था, तो ये असंख्यात गुणित निर्जरा जो हो रही है अरहंत को नमस्कार करते समय, सवाल ये है कि रत्नत्रय तो नमस्कार करने से पहले भी था, नमस्कार करते समय भी है और नमस्कार के बाद भी है। ये बात स्पष्ट है ना? तो निर्जरा नमस्कार करते समय क्यों हुई? असंख्यात गुणी निर्जरा नमस्कार करते समय ही क्यों हुई? पहले नहीं, बाद में नहीं, नमस्कार करते समय क्यों हुई? तो आचार्य महाराज ने यह स्पष्ट लिखा है कि अरहंत को नमस्कार किया गया, वह नमस्कार निर्जरा का कारण है, वो नमस्कार शुद्ध उपयोग है क्या या शुभोपयोग है? जहां वंद्य वंदक भाव आता है तो वो सविकल्प अवस्था होती है, अद्वैत अवस्था नहीं होती, निर्विकल्प अवस्था नहीं होती। जहां पर मैं वंदक हूं और अरहंत वंद्य है, वंदनीय है, ये भेद हो गया, तो ये भेद दशा जो है ये सराग दशा है, वीतराग नहीं है। और इस सराग दशा में जो नमस्कार का भाव है वो धर्मानुराग है, और उस धर्मानुराग को वो निर्जरा का कारण बोल रहे हैं। तो आप कैसे लगाओगे वहां पर शुद्ध उपयोग? आप ये कैसे घटित करोगे कि रत्नत्रय से निर्जरा हुई है? रत्नत्रय की उपस्थिति में हुई है, ये पक्की बात है, बिना रत्नत्रय के नहीं हुई है। रत्नत्रय वहां था, लेकिन रत्नत्रय तो आगे पीछे भी है। निर्जरा उस अरहंत नमस्कार के काल में हुई है। आप्त परीक्षा ग्रंथ की 9वीं कारिका की टीका में लिखा है कि जिसके होने पर कार्य हो और न होने पर न हो, उसे उस कार्य का निमित्त कहते हैं। तो अरहंत नमस्कार करते समय असंख्यात गुणित निर्जरा हुई, उसके पहले नहीं हो रही थी, उसके बाद भी नहीं हो रही थी, रत्नत्रय से होने वाली असंख्यात गुणित निर्जरा जीवन भर हो रही थी, लेकिन अरहंत नमस्कार जनित जो निर्जरा थी वो उतने काल तक हुई जब अरहंत नमस्कार किया। तो फिर निर्जरा का कारण कौन ठहरा? न्याय से बताओ कौन ठहरा? अरहंत नमस्कार तो लिखा ही है आचार्य महाराज ने, लेकिन अपन अभी विचार कर रहे हैं कि निर्जरा का कारण वास्तव में कौन है। तो अरहंत नमस्कार जो है उसके साथ में जो धर्मानुराग है, बल्कि अरहंत नमस्कार एक प्रकार का धर्मानुराग है, और वो नमस्कार जो है उनके गुणों के प्रति इतना प्रबल अनुराग होता है कि वो झुके बिना रहने नहीं देता। वो मुनिराज को भी झुका देता है चरणों में अरहंतों के। तो एक तो कुंदकुंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो परम भक्ति के राग पूर्वक नमंती जे परम भक्ति रायेण रायेण रागेण, जो परम भक्ति के राग पूर्वक जिनवर चरणंबुर हम नमंती, जिनेंद्र भगवान के चरण कमल को नमस्कार करते हैं, ते जम वेली मूलम खणंति वर भाव सत्येण, वो उत्तम भाव रूपी शस्त्र द्वारा संसार रूपी लता की जड़ को खोद डालते हैं। तो ये जो भक्ति राग है ये केवल बंध का कारण है क्या? ये प्रश्न फिर से यहां पर आपके सामने है। इतने पर भी अगर किसी के मन में कोई पूर्व धारणा बैठी हुई हो और वो कह रही हो कि मैं अभी निकलना नहीं चाहती, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, तो फिर उसके लिए एक और उदाहरण देते हैं आगम से। वो उदाहरण ये है कि जब एक मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला होता है, सम्यक्त्व के अभिमुख होता है, जब वो लब्धियों को प्राप्त करता है, पांच लब्धियां होती है सम्यक दर्शन होने से पहले, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। अब इन पांच लब्धियों में से चार लब्धियों तक अभव्य जीव भी चले जाते हैं, लेकिन करण लब्धि में जो चला गया है वो भव्य ही होता है, और करण लब्धि में जाने वाले को सम्यक तो निश्चित होता है, वो फिर नीचे नहीं लौटता नहीं है करण लब्धि वाला जीव। तो बात यह है कि करण लब्धि में एक अपूर्व करण है, एक अध प्रवृत्त करण, दूसरा अपूर्व करण, तीसरा अनिवृत्ति करण है। करणे पूर्ण हो ही सम्मतम, करण लब्धि पूरी हो जाती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो वहां पर अपूर्व करण के काल में चार आवश्यक क्रियाएं होती है। गुण संक्रमण एक क्रिया है, दूसरा है, दूसरी क्रिया का नाम है गुण श्रेणी निर्जरा, तीसरी क्रिया का नाम है स्थिति कांडक घात, और चौथी क्रिया का नाम है अनुभाग कांडक घात। इन चार क्रियाओं में से जो गुण श्रेणी निर्जरा है, ये सिद्धांत का वचन है कि ये गुण श्रेणी निर्जरा मिथ्या दृष्टि को प्राप्त हो रही है, वो सम्यक्त के अभिमुख हुआ है, तो उस मिथ्या दृष्टि को गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। कुछ स्वाध्यायी बंधुओं की यह धारणा है कि उस सातिशय मिथ्या दृष्टि का जो उपयोग है वो शुद्धोपयोग है, क्योंकि उन्होंने निर्जरा को शुद्धोपयोग के साथ इतना मजबूत बांध करके रखा है कि वो निर्जरा शुद्धोपयोग को छोड़कर किसी और उपयोग के पास जा नहीं सकती बेचारी। तो उनसे हमारा एक सवाल है कि शुद्धोपयोग के पर्यायवाची शब्द क्या है वो बता दें। शुद्धोपयोग को अभेद रत्नत्रय भी कहते हैं, शुद्धोपयोग को परम समाधि कहते हैं, शुद्धोपयोग को निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं, शुद्धोपयोग के और भी बड़े सुंदर सुंदर नाम हैं। जहां पर मिथ्यात्व उदय में है, जहां पर सम्यक्त्व उत्पन्न ही नहीं हुआ है, वहां पर जब एक रत्न भी नहीं है तब तीन रत्नों की अभेद परिणति कैसे प्रमाणित होगी, इसका समाधान आवश्यक है। यदि आप ये मानते हैं कि प्रथम गुण स्थान में करण लब्धि के समय जो निर्जरा हो रही है वो शुद्धोपयोग से हो रही है, सातिशय मिथ्या दृष्टि को शुद्धोपयोग होता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो फिर शुद्धोपयोग की जो अन्य पर्यायवाची शब्द है उसमें एक अभेद रत्नत्रय शब्द भी आया है, जहां पर एक भी रत्न नहीं है, वहां तीन रत्नों की एक रूपता, अभेद का अर्थ होता है जो भेद है उसका अभाव हो जाना, अभिन्न हो जाना, वो कैसे बनेगी। और रत्नत्रय के अभाव में उस समय जो भाव है वो कौन सा भाव है, अशुभोपयोग है, शुभोपयोग है या शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग में तो अभी संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जिस पंक्ति के आधार पर ऐसी धारणा बन रही है वह पंक्ति समय पाहुड़ ग्रंथ की पंक्ति है, उसका अर्थ एक बार यहां पर बता देते हैं। भले ही अपन तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी विषय में अपन जब ज्यादा गहराई से जाते हैं तो कुछ आनुषंगिक शास्त्रीय संदर्भ भी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। किंच विशेष गाथा क्रमांक 320 के बाद आचार्य जयसिंह स्वामी ने कुछ वर्णन किया है। मोक्षाधिकार समाप्त होता है समय पावड़ का, उसके बाद आचार्य महाराज कुछ पंक्तियां लिखते हैं, उन पंक्तियों का जो अर्थ है उसको सावधानी से ग्रहण करने पर ये समस्या दूर हो सकती है। एक बार ध्यान दीजिएगा, यदा कालादि लब्धि वशेन, जब कालादिक लब्धियों के प्रभाव से भव्यत्व शक्तेर व्यक्तिर भवति, कोई मिथ्या दृष्टि जीव की भव्यत्व शक्ति प्रकट होती है, तदायं जीव, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण, सहज शुद्ध पारिणामिक भाव नाम का जो निज परमात्म द्रव्य, अपना परम आत्म द्रव्य है, उसके प्रति सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुचरण पर्यायेण परिणमति, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुचरण, इन तीन पर्याय से, तीन रूप पर्याय से परिणत होता है, यानी रत्नत्रय से परिणत होता है, ये बात यहां पर कही है। तच्च परिणमनम, और वह परिणमन आगम भाषयोपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिकम भावत्रयम भण्यते, वो आगम की भाषा से औपशमिक क्षायिक या क्षायिक भाव कहलाता है, ठीक है। अध्यात्म भाषया पुनः और आध्यात्मिक भाषा से शुद्धात्माभिमुख परिणाम, जो शुद्धात्मा यानी वो परम पारिणामिक भाव, उसके अभिमुख परिणाम होने से शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा लभते। शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञाओं को, पर्यायवाची शब्दों को वो प्राप्त कर लेता है, उसके इतने नाम हो जाते हैं। तो अब इसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि यहां तो रत्नत्रय बताया है और शुद्धोपयोग बताया है। सवाल यह है कि ये शुद्धोपयोग किनके लिए बताया है? जिनके पास रत्नत्रय है उनके लिए बताया है। यहां ऐसा नियम सूचित नहीं किया गया कि सभी जीवों के साथ ऐसी ही घटना होती है। जो जीव रत्नत्रय रूप परिणति को प्राप्त होता है उसको शुद्धोपयोग होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां रत्नत्रय न हो वहां पर ये कैसे संभव है? और ये अवस्था जो बताई है, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुचरण रूप से वो परिणत होता है, तो ये रत्नत्रय की पर्याय प्रकट होने के बाद की बात है, ये मिथ्यात्व गुणस्थान की बात नहीं है। तो इस पंक्ति से ऐसा सिद्ध नहीं होता कि मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग हो रहा है। यहां पर रत्नत्रय धारी को शुभोपयोग हो रहा है, ऐसी सिद्धि हो रही है इस पंक्ति से, क्योंकि सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुचरण, ये तीन शब्द अपने आप में पर्याप्त है रत्नत्रय को बताने के लिए। तो समय पावड़ की ये बात थी। तो प्रश्न ये है कि जिसके पास एक भी रत्न नहीं है उसके पास शुद्धोपयोग कैसे संभव है? और शुद्धोपयोग के बिना वहां जो गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है करण लब्धि में, वो कौन से भाव से हो रही है? बात समझ में आ रही है? कौन से भाव से हो रही है वो निर्जरा, इस पर विचार करिएगा। तो इसलिए शुभोपयोग केवल बंध का कारण है, इस धारणा में पुनर्विचार अपेक्षित है। जैनम जयतु शासनम। चर्चा अभी सम्यक तो क्रिया को लेकर ही चल रही थी, उस पर से ये बात निकल पड़ी है।